नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबुजा में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबो से वार्ता करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स मंगलवार को अमेरिका के केप कैनावेरल से भारतीय संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण करेगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस राइट को ऊर्जा मंत्री के रूप में नामित किया। चीन के जियांगसू प्रांत में चाकू हमले में 8 लोगों की मौत तथा 17 घायल। और हॉकी में आज महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का सामना जापान से। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबुजा में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबो से वार्ता करेंगे। दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के अन्य उपायों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी नाइजीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे।
2007 से रणनीतिक भागीदारी के साथ साथ भारत और नाइजीरिया बढ़ते आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में स्थायी साझेदार रहे हैं। 200 से अधिक भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में $27 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। दोनों देशों के बीच एक मजबूत विकास सहयोग साझेदारी भी है। नाइजीरियाई राष्ट्रपति पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे। नाइजीरिया अफ्रीका के भीतर एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो अब ब्रिक्स का भागीदार देश भी बन गया है। भारत और नाइजीरिया दोनों ही देश बहुधार्मिक, बहुजातीय और बहुभाषी है। नाइजीरिया में लगभग 60,000 भारतीय प्रवासी है। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री तीन देशों नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की 5 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल रात नाइजीरिया पहुंचे। 17 वर्षों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये नाइजीरिया की पहली यात्रा है। श्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल ब्राजील जाएंगे, जहां वे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण रखेंगे और भारत में आयोजित हुए G20 तथा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के परिणामों की भी चर्चा करेंगे। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में श्री मोदी 19 से 21 नवंबर तक गयाना की राजकीय यात्रा करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव आयोग मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप के माध्यम से जागरूकता फैला रहा है।
पोलिंग पार्टी का स्वागत रंगोली बनाकर करने से लेकर दुल्हा दुल्हन द्वारा मतदाताओं से मतदान करने की अपील करने वाले फ्लेक्स को पकड़े हुए और 75% मतदान रिकॉर्ड करने वाले गांवों, संस्थानों और हाउसिंग सोसाइटियों को सम्मानित करने तक ये सब आगामी चुनाव मौसम में देखे जाने वाले कुछ कदम है। संगमनेर तालुका के अहिल्यानगर जिले के घुलेवाड़ी में वसुंधरा कृष्णराव डांगे के घर के बाहर रंगोली देखना पोलिंग पार्टी के लिए सुखद आश्चर्य था। पोलिंग पार्टी इस 88 वर्षीय महिला के घर गृह मतदान सुविधा के लिए पहुंची थी। अहिल्यानगर जिले के जिला कलेक्टर द्वारा तैयार की गई ये नवनीतम पहल अब शहर में चर्चा का विषय बन गई है। इसके साथ ही इन गांव, हाउसिंग सोसाइटियों और संस्थानों को लोकतंत्र के वास्तुकार कहा जाएगा। अंकिता आपटे के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज गढ़चिरौली, वर्धा और नागपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नासिक, अहिल्यानगर और मुंबई में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार अहिल्यानगर, पुणे, सतारा और कोल्हापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागपुर, कोल्हापुर और सांगली में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी गढ़चिरौली में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगी और नागपुर में रोड शो करेंगी। एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार पुणे और रायगढ़ में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पालघर और सतारा में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
उधर झारखंड में राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज गोमिया, सिंदरी और नाला में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्यभर में 6 रैलियों का कार्यक्रम है। कांग्रेस राज्यभर में कई बैठकें करने वाली है। उधर राजद नेता तेजस्वी यादव भी धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा और चंपई सोरेन सहित कई अन्य नेता भी एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। आजसू पार्टी और वामपंथी दलों के नेता भी झारखंड में विभिन्न हिस्सों में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण और झारखंड में दूसरे तथा अंतिम चरण का मतदान 20 नवम्बर को होगा और दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवम्बर को होगी। विधानसभा चुनाव की विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवार निर्वाचन क्षेत्र की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ निजामुद्दीन अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के घटक दल CPIML के राजकुमार यादव भी यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 16 निर्दलीय समेत 24 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अब देखना है कि भाजपा के बाबूलाल मरांडी तीसरी बार चुनाव जीत पाते हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा के निजामुद्दीन अंसारी को कामयाबी मिलती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कृष्ण कुमार लाल।
इस बीच निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत पर भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कल दोपहर 1 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण मंगलवार को अमरीका के केप कैनावेरल से किया जाएगा। ये एलन मस्क की कंपनी SpaceX के फाल्कन 9 यान से प्रक्षेपित होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी है। 4,700 किलोग्राम के GSAT-20 उपग्रह के 14 वर्षों तक परिचालन में रहने की आशा है। ये पूरे भारत में महत्वपूर्ण रूप से इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी भी शामिल है। GSAT-20 को GSAT-N2 भी कहा जाता है और ये भारत के अब तक के सबसे भारी उपग्रहों में से एक है, जिसे अंतरिक्ष में ले जाने के लिए SpaceX को चुना गया है। चीन के जियांगसू प्रांत में एक स्कूल में चाकू से किए गए हमले में 8 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए। ये हमला एक्सिंग शहर में कल शाम 6:30 बजे के करीब हुआ। घटनास्थल पर एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चीन में इस सप्ताह नागरिकों पर होने वाला ये दूसरा हमला है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिबर्टी एनर्जी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी क्रिस राइट को ऊर्जा विभाग का प्रमुख बनाने की घोषणा की है। क्रिस राइट जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल के मुखर समर्थक हैं। संभावना है कि श्री ट्रंप के तेल और गैस के अधिकतम उत्पादन के लक्ष्यों को वे लागू करेंगे। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को अतिशयोक्तिपूर्ण बताकर खारिज करने वाले राइट ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के प्रयासों की तुलना सोवियत साम्यवाद से की है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कल रात मूसी नदी क्षेत्र के 20 स्थानों पर मूसी निद्रा कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम के तहत पार्टी के नेता नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के घर में सोए। इस तरह से भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा साबरमती परियोजना की तर्ज पर प्रस्तावित मूसी कायाकल्प परियोजना के लिए लोगों के विस्थापन का विरोध किया। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और केरल में आज गरज के साथ तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। देश के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग में अगले 4 से 5 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 428 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में दिल्ली और इससे सटे इलाकों में रात तथा सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप को लागू करने वाले अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे सटे राज्यों के सभी चिन्हित प्रदूषित स्थानों पर प्रदूषण से प्राथमिकता से निपटने के निर्देश दिए हैं। ग्रेप को सख्ती से लागू कराने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कल नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की। आयोग ने अधिकारियों से नागरिकों की सभी लंबित शिकायतों का समाधान एक सप्ताह में करने का निर्देश दिया। प्रदूषण नियंत्रण पर निगरानी के लिए सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को विभिन्न एजेंसियों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ तालमेल रखने को भी कहा गया है। आयोग ने ग्रैप स्टेज 3 के तहत किए जाने वाले कार्यों के बारे में दैनिक स्तर पर सूचित करने का भी निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान को उपयोगी बनाने में सहायक सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर जनता से पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी माँ के सम्मान में एक पेड़ लगाने का आग्रह किया। फिल्म निर्माता आशुतोष गोवरिकर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री गोवरिकर जोधा अकबर, लगान और स्वदेश जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव से जुड़कर वे सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ये महोत्सव 20 से 28 नवम्बर तक गोवा में आयोजित होगा। श्री गोवरिकर ने कहा कि समय के साथ लगातार विकसित हो रहे सिनेमा को देखने के लिए इस महोत्सव से बेहतर कोई जगह नहीं है। महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत का मुकाबला अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में आज जापान से होगा। ये मैच बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में शाम 4:45 पर शुरू होगा। भारत ने महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार जीत का सिलसिला जारी रखते हुए चीन को 3-0 से हराकर लगातार चौथी दर्ज की। इस जीत के साथ ही मेजबान भारतीय टीम 4 मैचों में 12 अंक हासिल करके पहले पायदान पर पहुंच गई है। उधर जापान ने अपने पिछले मैच में मलेशिया को 2-1 से हराकर महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी पहली जीत दर्ज की। कोरिया और थाईलैंड के खिलाफ उसका मैच ड्रॉ रहा, जबकि चीन से उसे हार का सामना करना पड़ा था। अन्य मैचों में चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया का सामना आज थाईलैंड से होगा। स्क्वैश में भारत के वीर चोटरानी आज सुबह कोस्टा रिका में कोलंबिया के रोनाल्ड पालोमिनो से SACC कोस्टा रिका ओपन 2024 के फाइनल में 1-3 से हार गए। इससे पहले टूर्नामेंट में वीर चोटरानी इंग्लैंड के सैमुअल ओसबॉर्न वाइल्ड से सेमीफाइनल में जीत के बाद फाइनल में पहुंचे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में यूक्रेन में रूस का हमला जल्दी समाप्त हो सकता है। श्री ज़ेलेंस्की ने युद्ध की कठिन परिस्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि रूस को युद्ध में सैनिकों और हथियारों के मामले में लाभ मिला है। ज़ेलेंस्की ने अगले साल तक कूटनीति के माध्यम से युद्ध समाप्त करने के यूक्रेन के लक्ष्य पर भी बल दिया। नवनिर्वाचित अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि वे एक ही दिन में युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार।
धन्यवाद निखिल। अखबारों ने आज अलग अलग समाचारों को प्रमुखता दी है। जनसत्ता और अमर उजाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, ब्राजील में G20 सम्मेलन में सार्थक चर्चा होने की उम्मीद। हरिभूमि ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को दिया है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। चुनावी और राजनीतिक गतिविधियों पर भी अखबारों की नजर है। राष्ट्रीय सहारा ने निर्वाचन आयोग के इस कथन को सुर्खी बनाया है, स्टार प्रचारकों को काबू में रखें, भाजपा और कांग्रेस अध्यक्ष से जवाब तलब। देशबंधु, हरिभूमि और दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया। वीर अर्जुन ने वाणिज्य पन्ने पर लिखा है, आयकर विभाग ने करदाताओं से अपने ITR में अधिक मूल्य की विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा करने के लिए अभियान शुरू किया। पंजाब केसरी की खबर है, भारत के जेनरिक फार्मेसी मॉडल की धूम, 14 देश अपनाने पर कर रहे हैं विचार, मॉरिशस ने शुरू किया। हिंदुस्तान की खेल पन्ने की सुर्खी है, दिग्गज मुक्केबाज माइक टायसन ने 58 साल की उम्र में 27 साल के जैक पॉल से हारकर भी जीते 167 करोड़ रुपए। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण के अनुसार अमेरिका ने 1400 प्राचीन वस्तुएं भारत को लौटाई।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबुजा में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनबू से वार्ता करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स मंगलवार को अमरीका के केप कैनावेरल से भारतीय संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण करेगी। अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस राइट को ऊर्जा मंत्री के रूप में नामित किया। चीन के जियांगसू प्रांत में चाकू हमले में 8 लोगों की मौत और 17 घायल। और हॉकी में आज महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का सामना जापान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।